بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، देखो तकब्बुर का इलाज, इस पर बात चल रही थी। तो उस पर आखिर में बात हुई थी। एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा कि तुम बेहतर हो तो तुम तो मेरे कुत्ते से भी बदतर हो। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर मेरा हिसाब किताब हो गया और मैं पास हो गया तो मैं बेहतर हूं कुत्ते से, और अगर मैं पकड़ा गया तो फिर कुत्ता बेहतर है। फिर फरमाया, क्या तू माल पर अकड़ता है? क्या माल तुझे माँ के पेट से मिला था? किसी देने वाले ने माल दिया है और जिसने दिया है वो जब चाहे वापस ले ले, तो अकड़ कर क्या फायदा? क्या तू सेहत पर अकड़ता है? अरे बड़े बड़े तंदुरुस्त लोग ऐसे गुजरे हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनसे सेहत वापस ली तो वो कुछ नहीं कर सके। जी अभी हमारे एक अजीज थे, एक नसीहत आमोज वाकया है नसीहत वाला, जिनका अभी 1-2 साल पहले इंतकाल हुआ। उनके बारे में सारे देवबंद में ये बात मशहूर थी कि वो बर्फ की सिली को मुक्का मारकर तोड़ देते थे। बर्फ की जो होता है ना, उसको मुक्का मारकर तोड़, इतने ताकतवर थे। उन्होंने कभी भी जिंदगी में तरबूज को चाकू से नहीं काटा, बस मुक्का मारा और तोड़ दिया। उसके साथ साथ बड़े आबिद और जाहिद आदमी थे। बाद में लाहौर में मुकीम हो गए थे। 4-5 साल पहले, 4-5 साल पहले लाहौर में उनसे मुलाकात के लिए गया तो देखा कि खाना खाने के लिए हाथ मुंह तक नहीं उठा रहा था, उठ रहा था। दूसरे लोग खाना खिला रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे देखकर रो पड़े। कहने लगे, वही हामिद है, जिनका नाम हामिद था, जो बर्फ की सिली मुक्के से तोड़ दिया करता था और अभी हाल है खुद अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता। जी तुम किस बात पर अकड़ते हो? किस बात पर अकड़ते हो? अरे तुम किस बात पर उतराते हो? सेहत पर अकड़ते हो? अरे कुव्वत पर अकड़ते हो? क्या माल पर अकड़ते हो? क्या इल्म पर अकड़ते हो? अरे इनमें से कोई चीज ऐसी है जिसकी हमेशा तुम्हारे पास रहने की गारंटी हो, रहने की गारंटी हो, बल्कि किसी देने वाले ने दी है, किसी देने वाले ने दी है, वो जब चाहे वापस ले ले। इसलिए 2-4 हर्फ उसने सिखा दिए हैं, वो अगर आज छीन ले तो तुम क्या कर लोगे? बस इसका इस्तेहजार और तकरार किया जाए, बस इसका इस्तेहजार और तकरार किया जाए। जी अल्लाह, जब कभी दिल में बड़ाई का ख्याल आए बस उसका ध्यान कर ले कि किसी देने वाले ने ये वस्फ अपने फजल से दिया है। उसका ध्यान कर ले कि किसी देने वाले ने ये सिफत, ये नेमत अपने फजल से दिया है, अपने इनाम से दिया है। तेरा कोई इस्तेहकाक नहीं था। कितने लोग हम में ऐसे हैं, कितने लोग हम में ऐसे हैं जो जुतियां चटखाते फिरते हैं, यानी घूमते फिरते हैं, और जिस तरह दिया है वो उसी तरह वापस भी ले सकता है। यानी कितने लोग ऐसे जिनको बस कुछ भी नियामत नहीं है। तो फरमाया, किसी देने वाले ने ये वस्फ अपने फजल से दिया है, अपने इनाम से दिया है, तेरा कोई इस्तेकाक नहीं था, और जिस तरह दिया है वो उसी तरह वापस भी ले सकता है। लिहाजा तेरे लिए अकड़ने की और दूसरों पर बड़ाई जतलाने का और अपने आप को अफजल समझने का कोई मौका नहीं। हाँ, शुक्र का मौका है कि अल्लाह आपने अपने फजलो करम से मुझे नेमत अता फरमाई है, आपने अपने फजलो करम से मुझे नेमत अता फरमाई है, मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, मेरे कब्जे कुदरत में नहीं था, आपने अपने फजल करम से मुझे अता फरमाई, अल्लाह आपका शुक्र है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रु, लकल हम्दु व लकल शुक्रु। शुक्र बेशुमार बीमारियों का इलाज है। शुक्र पर बहुत तफसील से बात हो चुकी है पहले दर्स में कई। तो देखो फरमाया ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है। हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शुक्र ऐसी चीज है कि बेशुमार रूहानी बीमारियों का इलाज है। जो आदमी शुक्र करेगा वो कभी तकब्बुर में मुब्तला नहीं होगा। उस वक्त मैंने बताया था ना जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता, मुख्तसर रास्ता, कि जहां इबादत के जरिए से जन्नत में जा रहे हैं वहां एक रास्ता और भी जो उससे ज्यादा शॉर्टकट है, वो शुक्र और सब्र का रास्ता है। तो फरमाया वो कभी तकब्बुर में मुब्तला नहीं होगा शुक्र करने वाला इंशाल्लाह। इसलिए कि शुक्र के माना क्या है, शुक्र के माना यह है कि नेमत जो मुझे मिली हुई है मैं इसके लायक नहीं था, मैं उसका मुस्तहिक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दी है, उसका शुक्र एहसान है। जी शुक्र कब किया जाता है? अगर कोई शख्स अपना फरीज अदा करे या कर्जा अदा करे तो क्या कर्ज खा के जिम्मे शुक्र अदा करना वाजिब है? नहीं। मसलन एक आदमी मुझसे 1,000 रुपया कर्ज ले गया, एक आदमी मुझसे 1,000 रुपया कर्ज ले गया और ये कहा कि 2 महीने बाद वापस करूंगा। ये एहसान तो मैंने किया कि मैंने 1,000 रुपये बतौर कर्ज दी। उसको चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे, फिर जब 2 माह बाद वो 1,000 रुपया मुझे वापस लाकर देगा तब भी एहसान देने वाले का रहा कि उसने 1,000 रुपये दिए थे और 2 माह तक उस 1,000 रुपये से अपने आप को महरूम रखा, लिहाजा वो कर्जदार जब वापस लाकर दे रहा है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, लिहाजा वो शुक्रिया का मुस्तहिक नहीं समझा जाएगा। जी वो लाकर दिया तो भी उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे दिया, और जब ये दे उसको तो भी इसको शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये कहा कि 2 महीने बाद वापस करूंगा, तो ये एहसान तो मैंने किया, तो मैंने 1,000 रुपये बतौर कर्ज दिए, उसको चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे, उसको चाहिए जिसने कर्ज लिया है। फिर जब 2 माह बाद वो 1,000 रुपया मुझे वापस ला कर देगा तब भी एहसान देने वाले का रहा कि उसने 1,000 रुपये दिए थे और 2 माह तक 1,000 रुपये से अपने आप को महरूम रखा, लिहाजा जब कर्ज वाला वापस करेगा तो फिर देने के बाद भी शुक्र अदा करे कि आपका शुक्र है कि आपने मुझे इस्तेमाल करने का मौका दिया, मेरी जरूरत पूरी करने का मौका दिया। तो ये शुक्रिया उस वक्त अदा किया जाता है जब आदमी अपने फरीजे से ज्यादा काम करे। मसलन 1,000 रुपये दूसरे के जिम्मे वाजिब थे, वापस करते वक्त तो उसने 1,000 के बजाय 1,200 रुपये अपनी तरफ से खुश दिली के साथ वापस कर दिए, क्योंकि उसने ज्यादा देकर एहसान किया, लिहाजा उसका शुक्रिया वाजिब है। जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के जिम्मे का जरूरी है, उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के जिम्मे का जरूरी वाजिब नहीं था, अल्लाह ताला के जिम्मे का जरूरी और वाजिब नहीं था और मैं उसका मुस्तहिक तो नहीं था, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने महज अपने फजल व करम से मुझे नेमत अता फरमाई। लिहाजा शुक्र के अंदर खुद ये एतराफ छुपा हुआ है कि मैं इसके लायक नहीं था। और जो शख्स लायक न होने का एतराफ करे क्या वो तकब्बुर में मुब्तला हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जब भी अल्लाह ताला की कोई नेमत मिले उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इंशाल्लाह तकब्बुर की जड़ कटती जाएगी, जड़ से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जब शैतान रांदे दरगाह हो गया, यानी अल्लाह ताला के दरबार से निकाल दिया गया और उसने अल्लाह ताला से कहा सुम्म लआतियन्नहुम मिन बैन अईदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, चूंकि इब्ने आदम ने मुझे तबाह किया है शैतान ने आखिर में क्या कहा कि आदम ने मुझे तबाह किया है, इसलिए उसका बदला लेने के लिए उसके पास मैं दाई जानिब से आऊंगा, मैं बाई तरफ से लेफ्ट से राइट से आऊंगा, लेफ्ट से आऊंगा, आगे से आऊंगा और पीछे से आऊंगा और इब्ने आदम को गुमराह करूंगा। आखिर में कहता है कि आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। क्या फरमाया कि शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो शैतान का दाव क्या है? नाशुक्री कराना। और शुक्र करने वाला शैतान के फंदे से निकल गया, इसलिए उसने फरमाया आखिर में ला तजिद अक्सर हुम शाकिरीन, के अक्सर आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। इसीलिए आज देखो हर एक को शिकायत हो रही है, शुक्र नहीं हो रहा है। भाई खाना मिला तो खाने पर शिकायत, क्या शुक्र नहीं है कि चलो खाना तो मिल गया, अब टेस्टी नहीं है तो खाना तो मिला, पेट तो भर सकता है, तो उस पर तो शुक्र अदा नहीं करेंगे, वो जो टेस्टी नहीं था तो उसकी नाशुक्री करेंगे। तो देखा भाई कपड़ा मिला तो कपड़ा मिला, बदन छुपा है तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन नाशुक्री करेंगे क्यों? कि कपड़ा अपनी पसंद का नहीं मिला तो नाशुक्री। सतर ढापना है, जरूरत तो पूरी हो गई तो उस पर शुक्र तो अदा करे, तो नाशुक्री आज आदत हो गई। किसी ने हमारा काम कर दिया है, हमारी मदद कर दी, तो मदद तो हो गई, उस पर शुक्र नहीं, जैसा कहा था वैसा नहीं हो, उस पर नाशुक्री, उसमें कुछ कमी रह गई, उस पर नाशुक्री। अब कमी रही थोड़ी सी ने, और काम किया ज्यादा, तो नेमत ज्यादा है, कमी कम है, तो उस कमी के शिकायत होती है लेकिन ज्यादा का शुक्र अदा नहीं होता। तो यह इसलिए फरमाया कि अक्सर 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 को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो आज यही आदत है हमारे अंदर नाशुक्री की, अल्लाह हम सबको माफ करे। बहुत नाशुक्री, बहुत नाशुक्री दादा। अब उसमें हर चीज में, मकान के अंदर भी और पहनने के अंदर भी, खाने पीने के अंदर भी, रिश्तेदारियों में भी और एक दूसरे से मिलने में भी नाशुक्री। तो ये चीजें होती है। हमारे हजरत वाला फरमाते थे शैतान चूंकि बड़ा खन्नास खर्राट है, उसको ये मालूम है, यानी बड़ा शार्प है, तेज, उसको मालूम है कि जो आदमी शुक्र करने वाला होगा उसके सामने मेरी नहीं चलेगी, उसके सामने मेरी नहीं चलेगी, उस पर मेरा दाव नहीं चलेगा। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला हो उस पर शैतान का दाव नहीं चलता। नेमतों का शुक्र अदा करने वाला हो उस पर शैतान का दाव नहीं चलता। अल्लाह, लिहाजा अल्लाह ताला की जो नेमत हासिल हो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला की जो नेमत हासिल हो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। सेहत पर शुक्र अदा करें जी, हम उस पर भी शुक्र, जरा से बीमारी ना शुक्र हो जाती, भाई सेहत ज्यादा मिली बीमारी कम आई है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और बीमारी भी आई है तो बीमारी भी मामूली आई है, कोई बड़ी बीमारी है तो उस पर भी शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मामूली दिया, बाकी तो मैं अल्लाह का खैरियत में हूं। तो हर चीज में तो थोड़ी सी तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ अगर ज्यादा, कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत तकलीफ में हैं, 24 घंटा तकलीफ में हैं, हमें दिन में 1 घंटा तकलीफ होती है तो हम उस पर तो शुक्र अदा करें कि मैं 23-23 घंटा तो मैं आफियत में होता हूं। लिहाजा अल्लाह ताला की जो नेमत हासिल उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और एक वक्त में सिर्फ एक नेमत नहीं है, एक वक्त में सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि हर लम्हा अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश बरस रही। और अल्लाह की नेमत एक वक्त में नहीं, हर सेकंड अल्लाह की नेमत मिल रही। वह इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसुहा, अगर अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। अब बताओ कितनी नेमत है कि हर सेकंड नेमत बरस रही है, शुमार करना चाहो तो उसको गिन नहीं सकते, ऐसी अल्लाह की नेमत। क्योंकि सूरज अल्लाह की नेमत, हवा अल्लाह की नेमत, परिंदे अल्लाह की नेमत, आंखों से देखना नेमत, जबान से बोलना नेमत, कानों से सुनना नेमत, हाथों से पकड़ना नेमत, खाना खाना उसका हजम होना नेमत, खा सकते हैं नेमत, दांत एक नेमत, जबान एक नेमत, जबान का टेस्ट एक नेमत, खाना हजम होना एक नेमत, और उसका फुजला पेशाब पाखाना निकलना उसका एक नेमत, सेहत एक नेमत, तो कितनी नेमतें हैं। ये तो अंदर की नेमत, फिर बाहर की नेमत, तो हर लम्हा नेमत है, हर सेकंड अगर गिनो तो एक एक नेमत है। जब भी आंख उठाओ तो नेमत। तो अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। इंसान चूंकि नाशुकरा है, इसलिए अगर जरा सी कोई तकलीफ पहुंच जाती है या परेशानी आ जाती है तो उसको हर वक्त गाता रहता है, हर वक्त गाता रहता है, परेशान परेशान हर वक्त गाता रहता है, बोलता रहता है, शिकायत करता रहता है। अल्लाह हम सबको माफ करे, और ऐन इस तकलीफ और परेशानी के वक्त में अल्लाह ताला की जो नेमत मुतवज्जे और मबजूल है, ऐन उस परेशानी के वक्त में भी अल्लाह ताला की जो नेमत उसको मिल रही है उनका कोई जिक्र नहीं। जब वो शिकायत कर रहा होता है उस वक्त में भी अल्लाह की नेमत उसको मिल रही होती है, लेकिन उसका उसका उस पर उसका कोई ध्यान ही नहीं होता, उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। अल्लाह, और एक एक नेमतों में हजार हजार नेमतें हैं। आंख एक नेमत है, उस आंख की नेमत में अगर नेमतें गिनने जाओ तो हजारों नेमतें हैं। हाँ, जबान एक नेमत है, इस जबान के अंदर कई नेमतें हैं जी, हर चीज में नेमतें भरी हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, बस उस पर शुक्र अदा करें। इसलिए देखो हम इस पर आ जावे कि हम उसका शुक्र अदा करें, उनका कोई जिक्र नहीं, उनकी तरफ जरा सा ध्यान नहीं जाता, वरना ऐने तकलीफ और परेशानी के वक्त भी अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हमारी तरफ मुतवज्जे होती है कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते। शुक्र का एक अंदाज देखो, शुक्र करने का एक अंदाज। हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक नाना थे जी, हजरत वाला की तरबियत में उनको भी बड़ा दखल रहा है, यानी डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके नाना थे जी। उनकी नाना ने हजरत डॉक्टर साहब की बड़ी तरबियत की है, बड़े फाजिल और बुजुर्गों की सोहबत याफ्ता थे, बड़े फाजिल और बुजुर्गों की सोहबत याफ्ता थे उनके नाना भी। हजरत फरमाया करते थे कि मैं बचपन में रात को सोने के वक्त उनको देखता, हजरत फरमाते कि मैं बचपन में रात को सोने के वक्त उनको देखता तो मुझे अजीब नजर आता था। नहीं, हजरत डॉक्टर साहब के नाना, डॉक्टर अब्दुल हई साहब के नाना, तो फरमाया करते थे कि मैं बचपन में रात को सोने के वक्त उनको देखता तो मुझे अजीब नजर आता था। वो ये कि मेरे नाना रात को सोने के वक्त बिस्तर पर बैठ जाते, सोने के वक्त बिस्तर पर बैठ जाते और बड़े वालेहाना अंदाज में पढ़ना शुरू करते, क्या एक अजीब तरीके, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, 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 बस मुसलसल झुम झुम कर काफी देर तक के पढ़ते रहे, गोया वजीफा ध्यान के साथ, क्योंकि नेमतों का इंतजार रखो तो उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। नेमतों का इंतजार करो तो पढ़ने में बड़ा मदद, बल्कि एक नेमत का तस्वुर करो, जबान का नेमत का तस्वुर किया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आंख की नेमत का तस्वुर किया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, खाने का जबान का टेस्ट का तस्वुर किया, आंखों से देखने का तस्वुर किया, सेहत का तस्वुर, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, तो और ज्यादा मजा आएगा। इस्तेजार नेमत हो फिर अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाह तमाम तारीफ तेरी है और तमाम शुक्र तेरा है, तेरा शुक्र है तूने मुझे नेमत दी। और उसको एक मरतबा दो मरतबा नहीं, मुसलसल झुम झुम कर काफी देर तक के पढ़ते रहते। जब मैंने कुछ होश संभाला, थोड़े बड़े हुए हजरत डॉक्टर साहब, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि बात दरअसल यह है कि सारा दिन तो गफलत में गुजर जाता है और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता, इसलिए मैं रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर अल्लाह ताला की एक एक नेमत का तसव्वुर करके उस पर शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह आपने मकान अता फरमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने सेहत अता फरमाई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने रिस्क अता फरमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने ये आराम देह बिस्तर अता फरमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने आफियत अता फरमाई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने बीवी अता फरमाई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने बच्चे अता फरमाए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अब देखा तो एक एक नेमत वही, अब वो बोल नहीं रहे लेकिन अंदर तसव्वुर कर रहे, गिन रहे। तो इस तरीके से अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। तो हम भी जरा एक मर्तबा कह दे आहिस्ता आवाज अपने दिल के अंदर, तमाम नेमतों को देखकर कहो कि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, एक एक नेमत का तसव्वुर करके उस पर शुक्र अदा करता हूं, ताकि नेमतों के शुक्र का हजारवा या लाखवा हिस्सा जबान से अदा हो जाए। जी तो हम इसका शुक्र अदा करें, आज से इसकी मशक करें कि हमें जबान से इसको कहना है और तसव्वुर करना है। हजरत फरमाया करते थे कि तुम भी ऐसा ही किया करो, रात को सोने से पहले तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर लिया करो, जरा सा ध्यान करोगे तो सैकड़ों नेमतों का इस्तेहजार हो जाएगा। अरे सिर्फ एक नेमत को सोचना शुरू करोगे तो वो भी इतनी ज्यादा नजर आएगी कि सारी उम्र भी सजदे में पड़े रहोगे तब भी उस एक नेमत का शुक्र अदा नहीं होगा। एक नेमत का शुक्र भी अदा नहीं, इतना अल्लाह का शुक्र। ये दो आंखें अल्लाह ताला ने दी है, एक आंख को ले लो और उसके बारे में सोचो कि कैसी नेमत है, जरा सा उसमें बाल आ जाए तब अंदाजा होगा कि कैसी नेमत है। उसी एक नेमत को सोचना शुरू कर दोगे तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकोगे कि अल्लाह ने इस नेमत की कैसी हिफाजत फरमाई। तकबुर से बचने का एक चुटकुला, चुटकुला हमारे हजरत फरमाया करते थे कि मियां ये तकबुर बड़ी खराब चीज है, मियां ये तकबुर बड़ी खराब चीज है, बड़े बड़े मुआलिजे को चक्कर दे देती है, इलाज करने वालों को भी चक्कर दे देती है, उसका इलाज करना आसान काम नहीं है। जी अरे बड़े बड़े इलाज करने वालों को भी चक्कर में करा देती है, लेकिन मैं तुम्हें एक चुटकुला बता रहा हूं। चुटकुले को क्या कहेंगे इंग्लिश में? नुस्खा, नुस्खा। एक इलाज बता रहे हैं, इस चुटकुले पर अमल कर लो तो इंशाल्लाह फिर इस तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला ही नहीं होंगे, और अगर हो गए तो इंशाल्लाह जल्दी निकल जाओगे। तो बता दू वो चुटकुला ये है, वो इलाज ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने की आदत डालो। बस हर वक्त हर लम्हा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आठों पहर हो अल्लाह ताला के शुक्र की रट लगाओ। मौसम अच्छा है तो क्या कर, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। आज दर्स में बैठने की तौफीक हो गई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। आज कोई बात हमारी समझ में आ गई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। हवा चल रही है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। बारिश आ रही है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। जी जो अच्छी बात सामने आए उस पर अल्लाह ताला का शुक्र, चाहे अरबी अल्फाज ना बोलो, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है, बस इतना कह दो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है। तो शुक्र अदा करने की आदत डालो, जितना जितना शुक्र अदा करोगे इंशाअल्लाह तकब्बुर से इतनी ही हिफाजत रहेगी। उतनी ही हिफाजत रहेगी। इस्तेजार के साथ कहने को तो ये छोटा सा अमल है, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े कांटे की बात है, यानी बड़े पते की बात है, बहुत अहम बात है। और अमल करना भी उस पर मुश्किल नहीं, सिर्फ ध्यान करना और मश्क करने की बात है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता। फिर किब्र की किस्में हैं, ये तो अभी बताया क्या कि किब्र के बचने का तरीका और किब्र के नुकसानात और किब्र कितनी छुपी हुई चीज है, उसकी क्या वईद है। अब किब्र की किस्में, इसमें एक बात और भी गई कि बाज मर्तबा इंसान का जाहिर कि अमल तकब्बुर होता है लेकिन हकीकत में तकब्बुर नहीं, और बाज मर्तबा जाहिरी अमल तवाजु का होता है हकीकत में वो तकब्बुर होता है। ये बहुत बारीक बारीक चीज है। अब किब्र की अकसाम फरमाया कि अकसाम किब्र की इस कसरत से है, किब्र की किस्में इतनी कसरत से है कि ला तउद्दु वला तुहसा। ओ हो, समझे, अक्सर उनमें अदक और अगमज इस कदर है कि बजुज मुहक्किक के किसी की भी नजर वहां नहीं पहुंचती। यानी अक्सर एक तो बहुत सारी किस्में हैं किब्र की और उसमें भी ऐसी ऐसी है जो बहुत बारीक है, वो जम्स होते हैं ना जिसको बगैर दूरबीन लगाए नहीं देख सकते, ऐसे ही किब्र की ऐसी ऐसी किस्में हैं कि जिसमें बहुत बारीक बारीक चीज को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होती है ना, बहुत ही छोटी और ऐसी छुपी हुई होती कि बगैर मुहक्किक के किसी की भी नजर वहां नहीं पहुंचती। उसमें उलमाए जाहिर को भी इस मुहक्किक की तकलीद बिला तफहुस हकीकत करना पड़ती है, बिला तखसीस उलमाए जाहिर को भी, यानी बाज उलमा जो होता है जिन्होंने अपनी इस्लाह नहीं कराई लेकिन उनको भी इस मुहक्किक की तकलीद करनी पड़ेगी, यानी इनकी बात माननी पड़ेगी कि हाँ वाकई जब ही उनको हकीकत मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि किब्र की बीमारी ऐसी है कि खुद बीमार को पता नहीं होता कि मैं इस बीमारी में मुबतला हूं, और किब्र की बाज किस्में इतनी बारीक कि अक्सर अवकात बीमार को उसका पता नहीं चलता। ऐसा शेख जो मुहक्किक भी हो वही पता लगाता है कि उसको ये बीमारी है या नहीं है और इस बीमारी का इलाज क्या है। जी तो अब बताओ मुहक्किक पता लगा सा, तो अब हमें कहां हमारी बीमारी का पता लगेगा, और हम तो समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर तो कोई गुनाह है ही नहीं, और बताओ ये तकब्बुर की कितनी किस्में हमारे अंदर होंगी हमें क्या पता। एक मिसाल के जरिए उसको समझिए, वो ये कि हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां ये मामूल था कि जब कोई शख्स अपनी इस्लाह कराने के लिए आता, जब कोई शख्स हजरत थानवी के यहां मामूल था कि जब कोई शख्स अपनी इस्लाह कराने के लिए आता तो किब्र का इलाज सबसे पहले किया जाता था। अल्लाह अकबर, इसीलिए तो लोग कहते हैं हजरत थानवी बहुत सख्त है, सख्त नहीं थे। तो फरमाया सबसे पहले किब्र का इलाज किया जाता था। हजरत वाला मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ इलाज तजवीज फरमाया करते थे। मसलन किसी के अंदर देखा कि उसके अंदर तकब्बुर है तो आपने उसे फरमाया कि तुम हर नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया करो कि भाइयों मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है। दूसरे दिन भाग जाएंगे हम तो मस्जिद में, वो भी ऐलान करो कि भाइयों मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे उससे नजात अता फरमाए। है कोई, अल्लाह अल्लाह कितना खतरनाक इलाज है। भाइयों मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है, मेरे लिए दुआ। मैं भी कहता हूं भाई जो सुनने वाले सबको, भाई मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे उससे नजात अता फरमाए। अब जाहिर है कि एक मुतकब्बिर आदमी जिसके दिल में तकब्बुर अपनी बड़ाई है, उसको जब भरे मजमे में ऐलान करना पड़े कि मेरे अंदर तकब्बुर है तो इस ऐलान के नतीजे में उसके दिल पर कयामत टूट पड़ती है। हाँ कयामत टूट पड़ती है, लेकिन जब शेख के हुक्म से करता है तो दिल पर इतनी जोर की जर्ब पड़ती है कि वो सारा तकबुर खत्म हो जाता है शेख के हुक्म से करता है। अगर शेख के हुक्म के बगैर करेगा तो भी दूसरा तकबुर आएगा। हाँ बहुत बारीक है ना, बताया ना कि वो समझा चलो ये इलाज अच्छा है, अभी कल से मैं ऐलान कर दूंगा मस्जिद में रोजाना, तो इलाज तो क्या हुआ, वो दूसरा तकबुर बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, दूसरी आ जाती है। तो अक्सर यानी हर एक को जिसके अंदर तकबर होता तो अलग अलग इलाज बताती थी, किसी को तो ये कहते, या मसलन किसी मुतकबिर के लिए इलाज तजवीज क्या करते कि तुम नमाजियों के जूते सीधे क्या करो, कि जो नमाज आते हैं ना जूते निकाल तुम ऐसा सीधा करो, इतना मतलब क्या है कि नमाजी जब बाहर निकले मस्जिद से तो जूते सामने ही हो और उसको पहनकर सीधा चल दे, तो फरमाया उसको कहते हैं जूता सीधा करो। तो फरमाया तो किसी को जूता सीधा करने को कहते, हर एक को मुख्तलिफ इलाज बताए, क्योंकि हर आदमी के लिए एक इलाज नहीं होता, चूंकि बीमारियां मुख्तलिफ होती है, उनके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, अस्बाब मुख्तलिफ होते हैं। देखो कैसी बीमारी, जैसे जिस्मानी बीमारी होती है ना, अभी एक को ही 10 मरीज है, 10 मरीज, लेकिन 10 मरीज को सर्दी खांसी है। अब डॉक्टर जानता है कि इसको सर्दी खांसी किसी और वजह से है, इसको सर्दी खांसी किसी और वजह से है, इसको किसी और वजह से, इसकी किसी और वजह से, इसलिए हर एक को दवा भी अलग अलग देता है, हालांकि बीमारी सबकी एक है। ऐसा ही रूहानी डॉक्टर भी भाई 10 मुतकब्बिर लोग आए उसके पास और वो अपना इलाज करा रहे, तो 10ों की जो तकब्बुर की बीमारी है वो उसकी वजूहात अलग अलग है, इसलिए उनके इलाज में दवा भी अलग अलग बताई जाती है। तब बताओ ये भी तो इलाज ही है ना, इसलिए किसी को जूता सीधा करते किसी को ऐलान करते, क्योंकि उसमें भी क्वालिटियां होती है। तो बहुत अजीब अजीब है वो तकब्बुर के इलाजों में, तो उनके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, असबाब भी मुख्तलिफ, कहते हैं देखो बीमारियां मुख्तलिफ होती है, फिर उस बीमारियों के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं, फिर उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती है, उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं, सब देखना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक इलाज सबके लिए तजवीज कर दो, इसीलिए शेख ऐसे ही नहीं बनता है, उसको बाकायदा उस ट्रेनिंग से गुजरा हुआ होता है, जब एतमाद होता है बड़ों को उसके बाद उसको इजाजत दी कि अब तुम भी इलाज कर सकते हो, तो वो सारे मराहिल से गुजर चुका होता है। तो फरमाया इसलिए एक इलाज, और जो जो सीखने वाला होगा तो क्या करेगा, भाई हमने तो बुजुर्गों की सोहबत में बैठकर एक इलाज सीखा था, वो सबको एक इलाज दे देगा, अब किसी को तो कामयाबी होगी किसी में नाकामी होगी, तो एक इलाज सबके लिए तजवीज कर दो, जैसे हकीम साहब ने एक ही जोशांदा सबके लिए तजवीज कर दिया, एक हकीम साहब थे। या कोई शख्स ये सोचे कि चूंकि हजरत वाला ने फुला शख्स को फुला बीमारी में इलाज तजवीज किया था तो लिहाजा मैं भी वही इलाज कर लूं, ये ठीक नहीं है, बल्कि शेख देखता है इसके लिए क्या मुनासिब है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ने के बाद देखा तकब्बुर की ये बीमारी का ये इलाज है और ये बीमारी मेरे अंदर है, अब वो खुद इलाज शुरू कर देता है। अरे बाबा तकब्बुर की बीमारी तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी की है उसके लिए ये इलाज मुफीद है या कोई और इलाज करना पड़ेगा, अगर यही इलाज जो तुमने पढ़ा वो करने जाओगे हो सकता है तकब्बुर और बढ़ जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है। तो इसलिए आजकल हमारी आदत क्या है, किताबों में पढ़ो और अपना इलाज करो, तो फिर डॉक्टर के अंदर भी ऐसा करो कि डॉक्टर की दवाओं की किताबें पढ़ो और अपना इलाज करो, हाँ तो उसमें तो कोई करता नहीं है, बोले नहीं पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर इसमें क्यों जी। अल्लाह अकबर, जी तो फरमाया खुद अपना इलाज करना। एक साहब ने देखा कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फुला शख्सों को इलाज बताया है, तो उस पर भी बता दी बात कि खुद अपना इलाज कैसे, कि तुम नमाजियों के जूते सीधे क्या करो, अब बजाय उसके के अपने इलाज के लिए खुद किसी डॉक्टर से रुजू करते और अपने लिए इलाज तजवीज कराते, उन साहब को देखा, उन साहब को देखकर क्या कहा, इनका इलाज ये तकबुर का है, तो खुद अपना इलाज शुरू कर दिया और ये भी नमाजों के जूते सीधे करने शुरू कर दिए। इसने दूसरों को देखकर इसने भी शुरू कर दिया, बोले मेरे अंदर भी तकबुर है तो अब लाओ मैं भी सीधा कर दूं तो मेरा इलाज हो जाएगा। अब उसने तो डॉक्टर ने बताया था इसलिए दवा ली, और ये तो खुद उसका देखा देखी दवा ले ली। ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास से आए और सर्दी खांसी की दवा, बोले कौन सी थी, बोले ये दी, अरे चलो ये मैं भी ले लेता हूँ, अच्छा ये नाम से डॉक्टर से ले लिया। अब बताओ उसका उसकी वो बजाय उसके बढ़ सकती है और कुछ बीमारी आ सकती है। बल्कि डॉक्टर से रुझू करो, फिर वो जो बताए वो करो। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि उसकी दवा इन्होंने भी ले ली। उन्होंने देखा कि नमाजों के जूते सीधे कर रहे हैं, चलो मैं भी शुरू कर दूं, मेरा भी इलाज हो जाएगा। तो हजरत को पता चला। अब ये क्या हुआ मालूम है, यानी था तो उनका मुरीद हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन हजरत थानी रहमतुल्लाह ने एक आदमी को जूता सीधे करने का कहा, इसको कुछ बोला नहीं, नहीं इन्होंने हजरत से कुछ कहा, लेकिन उसको देखा देखी उन्होंने कहा चलो इसमें तवाजो आती है तो मैं भी शुरू कर दूं, इन्होंने भी जूते सीधे करना शुरू कर दिया। हजरत को पता चला कि फुला साहब ने खुद से ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर तो मौजूद था। तो आपने उसको बुलाया और उसे फरमाया कि इस तरह इलाज नहीं हुआ करता, उसे फरमाया कि इस तरह इलाज नहीं हुआ करता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस तरह लोगों के जूते सीधे करने से तुम्हारे तकब्बुर में और ज्यादा इजाफा होगा। लो देखा, इलाज तो तकब्बुर का है लेकिन तुम्हारे लिए और ज्यादा इजाफा होगा, तुम्हारा तकब्बुर और बढ़ेगा। इसको रिएक्शन कहते हैं, ज्यादा इस तकब्बुर में कमी नहीं होगी, इसलिए कि दिमाग में शैतान ये बात बिठाएगा कि देख तू कितना मुतवाजे है, देख तू कितना मुतवाजे है, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आदमी खुद अपने तकब्बुर का इलाज करने बैठ जाए। ये नहीं हो सकता कि आदमी खुद अपने तकब्बुर का इलाज करने बैठ जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ये इल्म अता किया हो वही ये काम कर सकता है। जी वही ये काम कर सकता है, इसलिए खुद कभी इलाज नहीं करना। जिस्मानी इलाज नहीं करते तो रूहानी इलाज भी, और दिल की बीमारियों का इलाज, तकब्बुर का इलाज खुद से नहीं करना। आज हम किताबें पढ़ पढ़कर खूब करते, भाई ये वजीफा है ये तकब्बुर की इलाज का, चलो इस वजीफे को शुरू कर दो, ये वजीफा है गिबत के इलाज का, चलो इस वजीफे को शुरू कर देते, और ये वजीफा है हसद के इलाज का, चलो शुरू कर देते, तो फिर जरूरत ही क्या थी। हाँ मशाई की जरूरत ही क्या थी। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने ऐसे इलाज शुरू कर दिए हैं, नहीं वो सारे वजीफे अपनी जगह पर सही है, पहले इलाज कराओ फिर वो मदद देंगे, वो शेख के मातहती में लेंगे तो नफा होगा, उस पर तवज्जो होती। किसी शेख से तरबियत हासिल करना, आमतौर पर ये इल्म अता नहीं होता, ये इल्म अता नहीं होता है जब तक उसने अपने आप को पामाल न किया हो। किसी किसी ने अपने आप को अपने बड़ों के सामने, अपने शेख के सामने मिटाया न हो, जब तक उसको ये इल्म नहीं मिलता है कि तकब्बुर की किस्मों और पहचानना उसका इलाज कर से। शेख थोड़े रगड़े देता है, उस रगड़े खाने के नतीजे में वो किब्र दिल से निकलता है, और उस वक्त हकीकत खुलती है कि किस किब्र का कैसे इलाज किया जाए, किस किब्र का कैसे इलाज किया जाए। हमारे जितने बुजुर्ग जिनका नाम लेकर हम जिंदा है ना, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत रगड़े खाए हुए थे, समझे। ये जब जाके अल्लाह ने उनसे काम लिया, ये इन्होंने बड़ों के सामने बहुत डांटे खाई है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो खुद साख्ता पीर बनकर बैठ गया हो, या खुद ब खुद पीर बन गया हो, बल्कि उन सब ने रगड़े खाई है, जूते सीधे किए हैं, डांटे खाई है, कड़वी कसीली बातें सुनी है। जी जब जाके बने हैं। अल्लाह अकबर। चलो इंशाल्लाह दूसरी बातें कल करेंगे। अब उस पर उन्होंने कैसे कैसे रगड़े खाई है, कैसे किसका इलाज हुआ, उसके किस्से इंशाल्लाह होंगे कल। दिन ब दिन लोग कम होते जा रहे हैं। अरे सुनो, बहुत नफा होगा, ये मजलिस से बार बार मिलती नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, मैं भी नहीं बोल रहा, अल्लाह ने दिल में बात डाली, अल्लाह ही चला रहा है, इसलिए बहुत एहतमाम से लोग सुने, अपने सारे कामों को आगे पीछे करें। ठीक है, थोड़ी देर मुराकबा कर लें।